नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ मैं हूं जागृति शर्मा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर डी गुकेश नकामुरा और निपुम नियाची के साथ कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से शीर्ष पर। ईशा सिंह महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल और भावेश शेखावत पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के ओलंपिक चयन ट्रायल के पहले दिन शीर्ष पर। और शीर्ष पैरा शटलर सुकांत कदम स्पेनिश पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। अभी बात करेंगे सबसे पहले आईपीएल की। आईपीएल में अभी लखनऊ और चेन्नई के बीच मुकाबला चल रहा है। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ ने पहले टॉस जीता है और गेंदबाजी का ऑप्शन उन्होंने चुना है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई के 4 विकेट जा चुके हैं और स्कोर हुआ है 90 रन, 12 ओवर खेले जा चुके हैं। तो अभी जिस तरह से चेन्नई खेल रहा है, 4 विकेट भी जा चुके हैं और स्कोर के अगर उसको देखा जाए आंकड़ों को, तो क्या लग रहा है दोनों टीमों के बीच में किस तरह का मुकाबला रहने वाला है?
देखिए, अभी अब तक जितने मैच हुए आईपीएल के, तो चेन्नई के गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, खासतौर पे मथीशा पथिराना को खेलना बहुत ही मुश्किल हुआ है हर बल्लेबाज के लिए। तो मुझे लगता है यहां अगर 170-175 रन भी बनाने में चेन्नई कामयाब रहती है, क्योंकि आखिरी ओवरों में उसके पास पिंच हीटर्स हैं, जाडेजा हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं। धोनी अपना कमाल, छोटे छोटे जो कैमियो उन्होंने किए हैं अब तक मैचेस में, वो सबको याद है। तो अगर यहां से थोड़ा सा भी रन गति वो बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं और 170-180 के आसपास ले जाते हैं, तो मुझे लगता है लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल पेश आने वाली है, क्योंकि चेन्नई की गेंदबाजी बहुत जबरदस्त है।
अभी आपने चेन्नई की गेंदबाजी की बात की है, तो अभी जिस तरीके से लखनऊ के गेंदबाजों का प्रदर्शन है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि उनके फिर बल्लेबाजों पे किस तरह की जिम्मेदारी रहेगी?
देखिए, लखनऊ में शीर्ष क्रम जो है लखनऊ का, अभी तक वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, चाहे केएल राहुल हो, चाहे डिकॉक हो, जैसे रन उनको बनाने चाहिए, उस स्ट्राइक रेट भी बहुत कम रहा है, क्योंकि इस आईपीएल में लगातार चर्चा हो रही है स्ट्राइक रेट की। तो लखनऊ की टीम का औसत स्कोर अगर देखा जाए तो वो 170-175 ही रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में। और जब हमने देखा है, जबकि कि यहां 200 से ऊपर के भी स्कोर बने हैं, तो थोड़ा दबाव जरूर होगा। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर यहां चेन्नई 150 के पार, 170 के पार पहुंचती है, तो लखनऊ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस लक्ष्य को हासिल करना।
बिल्कुल। और ये तो आज के मैच की बात रही, और अगर हम कल के मैच की बात करें, तो कल रात चंडीगढ़ में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 9 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 192 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव जी का शानदार अर्धशतक रहा, जिसके दम पर मुंबई ने 192 रन बनाए। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आशुतोष शर्मा की जो धुआंधार पारी थी, वो कहीं जीत के लिए काम में नहीं आई। तो मतलब किस तरह से देखते हैं इस मैच को आप?
देखिए, आशुतोष शर्मा के लिए मुझे लगता है बहुत ही दुखद है कि 28 गेंद में 61 रन उन्होंने बनाए, जबरदस्त स्ट्राइक रेट। और पंजाब को हम देखें तो चाहे शशांक सिंह हो, चाहे आशुतोष हो, ये दो इस आईपीएल की खोज हम कह सकते हैं कि इतने जबरदस्त बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन यहां वही है कि अगर आपका शीर्ष क्रम नहीं चल पा रहा है, आपके बल्लेबाज बाकी के जो मेन बैट्समैन है ऊपर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो दो अकेले खिलाड़ी टूर्नामेंट में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, कभी शशांक सिंह का नाम आता है तो कभी आशुतोष शर्मा का नाम आता है, ऐसे लगता है कि 11 खिलाड़ी लेके पंजाब उतरा नहीं है, ये दो ही खिलाड़ी बस नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि टीम 90 नंबर पर आ गई है अंक तालिका में, जबकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, कुछ एक मैच बहुत अच्छे खेले थे। और यहां कहीं न कहीं शिखर धवन के चोटिल होने का भी असर पंजाब के प्रदर्शन पर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाने में मदद की है, उनकी कमी टीम को खल रही है, कप्तान के रूप में भी और बल्लेबाज के रूप में भी। सैम करन अपने प्रतिभा के साथ न्याय करते नजर नहीं आ रहे हैं, जो कार्यवाहक कप्तान है, तो यहां निराशाजनक है। और दूसरी तरफ मुंबई की अगर बात करें तो जिस टीम में सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज हो, आपने देखा कि शुरुआती कुछ मैचों में वो बाहर थे, लेकिन वो जब से आए हैं टीम की उन्होंने पूरी दशा और दिशा ही बदल दी है। पिछले जब जीत की राह पर लौटी थी मुंबई, उसमें भी सूर्य कुमार यादव का आतिशी अर्धशतक शामिल था, कल भी उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन यहां जो मैच के नायक थे वो जसप्रीत बुमराह थे। एक बार फिर जिस तरीके की यॉर्कर और बाउंसर का जो तालमेल बिठाकर वो गेंदबाजी करते हैं, और पहले स्पेल में ही उन्होंने विकेट चटक के पंजाब को अच्छी शुरुआत नहीं करने दी। हालांकि ये फैसला मुझे समझ नहीं आया कि जब दो ओवर में उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन करके विकेट चटकाया, उसके बाद 13वें ओवर में जाकर उनको गेंद सौंपी गई, तो जिस टैक्टिकल ब्लंडर्स की हम बार बार बात करते हैं कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर जो सवालिया उंगली उठती रही है इस टूर्नामेंट में, तो अगर कल किस्मत ने साथ दिया और पंजाब 9 रन से हार गया, लेकिन ये चूक कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती थी,
इसीलिए लगातार उनकी कप्तानी पे जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं।
बिल्कुल, एक मैच में उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बजाय खुद नई गेंद संभाली और पहला ओवर डाला, जबकि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज आपके पास है, आप संसाधनों का जो सही उपयोग होता है, आप महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, आप रोहित शर्मा को देखिए, जितने आईपीएल के सफल कप्तान रहे हैं, कि कैसे आप संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि अभी हार्दिक पांड्या को बहुत लंबा सफर उसके लिए तय करना है,
अभी सीखने की जरूरत है, तभी वो बेहतर और सफल कप्तान के रूप में हमें नजर आएंगे। और अगर हम कल होने वाले मैच की बात करें जो कि दिल्ली में खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, तो इन दोनों टीमों के लिए आपको क्या लगता है?
देखिए, सनराइजर्स अगर इस पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की हम बात करें तो जिस टीम का सबसे पहले ध्यान आता है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट पर 277 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद आरसीबी के खिलाफ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 283 रन बना डाले, तो जो उसके बल्लेबाजों का फॉर्म है, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, 39 गेंद में उन्होंने सेंचुरी बना दी, 235 रन बना चुके हैं, और एक बार फिर उन पर सबकी नजरें होंगी, अभिषेक शर्मा 211 रन बना चुके हैं, और हेनरिच क्लासन, इन तीनों का जो स्ट्राइक रेट है 199-197 के आसपास रहा है, तो अगर इतना खतरनाक टीम का पिछला प्रदर्शन है तो सामने वाली टीम वैसे ही दबाव में आ जाती है, और ईशान शर्मा हो, खालिद हो, या फिर मुकेश कुमार हो, दिल्ली के जो बॉलर्स हैं उनके लिए ये बहुत कड़ी चुनौती होगी। और यहां हमें एक खास जो बात ये भी है कि एक साल पहले इसी अरुण जेटली स्टेडियम पर ऋषभ पंत बैसाखियों के सहारे चलते हुए आए थे, और कल वो कमान संभालेंगे, होम कमिंग है उनके लिए,
घर वापसी
है, 2 साल बाद इतना इमोशनल एक मोमेंट होगा अपने मैदान पर खेलना, और जो उन्होंने मैदान के अंदर और मैदान के बाहर भी जबरदस्त जीवट का प्रदर्शन किया है और अच्छा खेल रहे हैं, फॉर्म में हैं, हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं, तो एक बार फिर उन पर दारोमदार होगा कि वो दिल्ली के आक्रमण को, दिल्ली की टीम की इस तरीके से कमान संभाले कि उसको शीर्ष 4 में ला सके, क्योंकि पिछले सत्र में उनकी कमी बहुत खली थी टीम को, अब वो एक कप्तान के तौर पर और परिपक्व होकर आए हैं, लाइफ लेसन्स लेकर आए हैं जिसको हम कह सकते हैं, और SRH के जो अब तक जितने आईपीएल हुए हैं, हम बात करते थे सनराइजर्स के गेंदबाजों की, चाहे वो राशिद खान जब सनराइजर्स के लिए खेलते थे, गेंदबाजी उनकी ताकत थी, लेकिन इस आईपीएल में सबसे कमजोर कड़ी सनराइजर्स के लिए जो है वो गेंदबाजी रही है। सिर्फ कप्तान पैट कमिंस ही एक ऐसे गेंदबाज है जो 8 के आसपास, 8 के अंदर की इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन दिए हैं, फिर जयदेव उनादकट हो, चाहे मयंक मार्कंडे हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, 11-12 की इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन दिए हैं। तो कहीं ना कहीं यहां गेंदबाजों को अपने प्रदर्शन में अनुशासन लाना होगा, ताकि वो बल्लेबाजों का, अगर बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाए तो उनको आप कमी उसकी पूरी कर सकें।
और अब बात चेस की। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अजरबैजान के निजात अबासोव को हराकर कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में संयुक्त बढ़त बना ली है। लेकिन आर प्रज्ञानानंदा और विदित गुजराती 12वें दौर के बाद दौर से अब लगभग बाहर हो गए हैं। तो एक तरफ भारत के जो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिनसे बहुत हम सबकी उम्मीदें थी, लोगों को लग रहा था, उनका नाम तो फिक्स लग रहा था, लेकिन वो अब जो है दौर से बाहर हो गए।
जी बिल्कुल, बहुत ही उतार चढ़ाव भरा प्रदर्शन रहा है। जैसे विदित गुजराती की अगर हम बात करें तो शुरुआत ही उनकी काफी धीमी हुई थी, बीच में उन्होंने रफ्तार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक शतरंज में ऐसा होता है आधा आधा अंक भी बहुत मैटर करता है, तो गुजराती शुरू से अपने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। आर प्रज्ञानानंदा से जरूर उम्मीदें थी, लेकिन ऑन एंड ऑफ बीच के जो दो बाजियां उन्होंने गवाई उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और गुकेश की तारीफ करनी होगी कि कल सेकंड नंबर पे आ गए थे, आज फिर उन्होंने जीत के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है और सिर्फ 17 साल के हैं, और बॉबी फिशर के बाद शायद वो पहले सबसे युवा, मतलब 1959-60 की अगर हम बात करें तो ये बहुत साल बाद इतना कम उम्र का खिलाड़ी है जो कैंडिडेट्स में खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं और खिताब की दौड़ में बने हुए हैं, तो देखना होगा बाकी दो दौर बचे हैं और उसमें उनको इस लय को कायम रखना होगा, क्योंकि बहुत कम अंतर है, आधे आधे अंक के अंतर से तय होता है, तो अभी इस लय को उन्हें बरकरार रखना होगा।
जी, गुकेश हिकारू नकामुरा और रूस के इयान निपोमनियाची के साथ शीर्ष पर हैं। और अगर महिला वर्ग की बात करें तो चीन की झोंगी तान ने बुल्गारिया की नूरगुल सलीमोवा से ड्रॉ खेला और वो अपनी हमवतन टीलेई के साथ शीर्ष के दो स्थानों पर काबिज हैं। भारत की कुनेरू हम्पी ने रूस की अलेक्जेंड्रा गारियाश्किना से ड्रॉ खेला, जबकि आर वैशाली ने यूक्रेन की अन्ना एम को हराया। हालांकि वैशाली 5.5 अंक के साथ छठे स्थान पर हैं। और अब बात करेंगे निशानेबाजी की। ईशा सिंह ने आज नई दिल्ली में ओलंपिक चयन ट्रायल के पहले दिन महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि भावेश शेखावत पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल वर्ग में शीर्ष पर रहे। ईशा ने महिलाओं की स्पोर्ट्स पिस्टल T1 क्वालिफिकेशन में प्रिसीजन और रैपिड फायर राउंड में कुल 585 का स्कोर किया, जिससे वो दूसरे स्थान पर रहने वाली सिमरनप्रीत कौर बराट से 2 अंक आगे रहीं। मनु भाकर तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि अभिज्ञान पाटिल चौथे और रिदम सांगवान 5वें स्थान पर रहे। शीर्ष पैरा शटलर सुकांत कदम स्पेनिश पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां पर उनका मुकाबला उनके हमवतन अभिजीत सखुजा से होगा। तो हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि जब भी पैरा एथलीट्स की और खिलाड़ियों की बात आती है तो उनकी अलग से एक जीवटता का प्रमाण और एक उदाहरण मिलता है कि जीवन में कितना आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस तरह के जब टूर्नामेंट होते हैं और खिलाड़ी जब खेलते हैं तो इनके लिए क्या प्रेरणा मिलती है?
देखिए, बैडमिंटन की बात करें, अगर हम पैरा बैडमिंटन की, तो भारत इसमें महाशक्ति अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे प्रमोद भगत हो, चाहे सुहास अलवाई हो, चाहे सुकांत कदम हो, ये सारे खिलाड़ी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, पैरालंपियंस रह चुके हैं, पैरा एशियन गेम्स में मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो एक बहुत ही अच्छा पूल है भारत के पास पैरा बैडमिंटन में, और अपेक्षा के अनुरूप ही प्रदर्शन है। और निश्चित तौर पर कि पिछले कुछ सालों में अगर हम भारत में पैरा एथलीटों के प्रदर्शन को देखें तो एक बूम सा आया नजर आता है। पैरालंपिक में टोक्यो में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था और अब पेरिस में भी जो पैरा बैडमिंटन है वो पदक उम्मीदों में से एक है भारत के लिए।
जी बिल्कुल, उम्मीदें बरकरार रहेंगी। और अब समय हो गया है श्रोताओं आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मोना आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
शुक्रिया।
इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को, नमस्कार।